श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में यहेजकेल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और महिमा। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन को हम आरंभ करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं। और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए आप तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से यहेजकेल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें बताया यहेजकेल नबी के द्वारा से कि जो पाप करे वही दंड पाएगा। ऐसा नहीं कि किसी ने पाप किया और उसका परिणाम किसी को मिलेगा। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम यहेजकेल नबी की पुस्तक 18 अध्याय उसके 10 पद से अध्ययन को आरंभ करते हैं। यहेजकेल 18 और उसके 10 पद में लिखा हुआ है, परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा या ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक धर्मी का पुत्र अधर्मी हो सकता है। तब आगे हम पढ़ते हैं यहेजकेल 18 के 13 पद में, ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित न रहेगा, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं, वह निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर पुत्र को ही दंड देगा, पिता को नहीं। यहेजकेल 18 के 14 में लिखा है, फिर यदि ऐसे मनुष्य का पुत्र हो और वह अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उनके समान ना करता हो। दूसरी ओर पुत्र अपने पिता की दुष्टता पर चलना ना चाहे। इसराइल के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आहाज एक दुष्ट राजा था, परंतु उसका पुत्र हिजकिय्याह एक धर्मी जन था जिसने देश में आत्मिक जागृति उत्पन्न की थी। योशिय्याह एक बहुत अच्छा मनुष्य था, परंतु उसका पिता महादुष्ट था। यहेजकेल 18 अध्याय उसके 17 और 18 पद में हम पढ़ते हैं, दीन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती न ली हो, मेरे नियमों को माना हो और मेरी विधियों पर चला हो, तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण न मरेगा, वरन जीवित ही रहेगा। उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का न्याय सांसारिक आचरण के अनुसार किया जाएगा। स्मरण रखें कि यह अनंत जीवन का न्याय नहीं है। वह यहाँ इसी जीवन के दंड की चर्चा यहाँ पर कर रहा है। वह चाहता है कि इसराइल जान ले कि वह इस आधार पर उन्हें दंड देगा। यहेजकेल 18 अध्याय के 20 में लिखा हुआ है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, यह दो बार कहा गया है यहां और पद 4 में भी। यहेजकेल 18 के 31 पद में लिखा हुआ है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, हे इसराइल के घराने तुम क्यों मरो। ध्यान दीजिए, आज का मनोवैज्ञानिक विचार है कि यदि कोई बिगड़ी संतान है तो उसका कारण है कि उसकी माता ने उससे प्रेम नहीं किया और उसके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। परंतु वचन कहता है आप अकेले हैं और अपने कर्मों का फल पाएंगे। आप पापी हैं तो अपने ही कारण पापी हैं। एक पुरानी कहावत इसका एक अच्छा उदाहरण है, प्रत्येक बर्तन अपने ही पेंदे पर टिकता है। प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के समक्ष खड़ा होगा और अपने पापा या मम्मी को दोष नहीं दे पाएगा। परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि प्रत्येक इसराइली अपने जीवन आचरण के आधार पर दंड पाएगा, अब वह विश्वासी हो या अविश्वासी। यहेजकेल 18 उसके 32 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। मेरे प्रियो, यहां फिर शारीरिक मृत्यु की चर्चा की गई है। परमेश्वर को किसी की मृत्यु से आनंद प्राप्त नहीं होता है, यह उसके लिए विचित्र बात है। उसने तो मनुष्य के लिए मृत्यु की कभी आशा नहीं की थी। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु लाजर की मृत्यु पर रोया था, यद्यपि वह उसे जीवित करने के लिए आया था। मृत्यु मनुष्य के कर्मों का फल है। परमेश्वर ने मृत्यु का प्रावधान नहीं किया है। मृत्यु मनुष्य के पापों का मूल है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अध्याय 18 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 19 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इसका विषय है इसराइल के प्रधानों के लिए परमेश्वर का विलाप गीत। अध्याय 19 में दो विलाप गीत हैं, इसराइल के प्रधानों के लिए विलाप गीत जिसे हम 1-9 पद में पाते हैं और इसराइल के दक्षिणी राज्य यहूदा के लिए विलाप गीत 10-14 पद में हम पाते हैं। हम यहेजकेल 19 उसके 1-3 पद में पढ़ते हैं, इसराइल के प्रधानों के विषय तू यह विलाप गीत सुना, तेरी माता एक कैसी सिंहनी थी, वह सिंहों के बीच बैठा करती और अपने बच्चों को जवान सिंहों के बीच पालती पोसती थी। अपने बच्चों में से उसने एक को पाला और वह जवान सिंह हो गया और अहेर पकड़ना सीख गया, उसने मनुष्यों को भी पकड़ खाया। मेरे प्रियो, जैसा कुछ टीकाकार कहते हैं कि यह यहेजकेल का विलाप गीत है, जी नहीं, यह परमेश्वर का विलाप गीत है या उसका विलाप गीत जो मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 37-39 पद में यरूशलेम के लिए हमें मिलता है, वही है जो यहूदा देश के प्रधानों के लिए रोया था। ये प्रधान वे लोग थे जिनसे बहुत कम लोगों का संबंध था, परंतु परमेश्वर का संबंध उनसे था। उनके लिए कौन रोया? परमेश्वर रोया था। प्रसंगवश आज आपकी चिंता किसे है? मेरे विचार में बहुत कम लोगों को आपकी चिंता है। आपके सहकर्मी क्या वास्तव में आपकी चिंता करते हैं? एक सफल व्यापारी ने एक बार मुझसे कहा, मैं वास्तव में सोचता हूं कि क्या किसी को मेरी चिंता है। सब लोग, मेरा परिवार भी इसी बात की चिंता में रहते हैं कि उन्हें मुझसे क्या मिल सकता है। यह बड़े दुख की बात है, परंतु परमेश्वर आपकी चिंता करता है, वह मेरी भी चिंता करता है। यह वास्तव में बड़ी शांतिदायक बात है। मैं इस विशाल संसार में खो सकता हूं, परंतु परमेश्वर की आंखें हम पर लगी हैं और वह हम में से हर एक की चिंता करता है। मेरे प्रियो, यहूदा के प्रधानों के लिए कोई भी आंसू बहाना नहीं चाहता था। यहोआहाज और यहोयाकीन ये दो राजा दुख का कारण थे, परंतु केवल परमेश्वर उनके लिए चिंतित था। हमने पढ़ा सिंह अर्थात यहूदा का सिंह। यहूदा शेरनी का बच्चा है। उत्पत्ति की पुस्तक 49 अध्याय उसके 9 पद में याकूब ने यहूदा को यही कहा था जब वह अपने प्रत्येक पुत्र के लिए भविष्य की बातें बता रहा था। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, सुन, वह दल सिंहनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय उसके 5 पद में प्रभु यीशु को यहूदा का सिंह कहा गया है। देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यहेजकेल की पुस्तक 19 अध्याय उसके 10 से 12 पद में लिखा है, तेरी माता जिससे तू उत्पन्न हुआ वह तट पर लगी हुई दाखलता के समान थी और गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई थी। प्रभुता करने वालों के राजदंडों के लिए उसमें मोटी मोटी टहनियां थी और उसकी ऊंचाई इतनी हुई कि वह बादलों के बीच तक पहुंची और अपनी बहुत सी डालियों समेत बहुत ही लंबी दिखाई पड़ी, तो भी वह जलजलाहट के साथ उखाड़कर भूमि पर गिराई गई और उसके फल पुरवाई हवा के लगने से सूख गए और उसकी मोटी टहनियां टूटकर सूख गई और वे आग से भस्म हो गई। यहां अब यहूदा देश के लिए विलाप गीत है। ये लोग इस देश में आए और परमेश्वर ने उन्हें आशीषें दी। वे उस देश में लगाई गई दाखलता थे। अब उसने उस दाखलता को उखाड़ दिया है। वे बंधुआई में जा रहे हैं। यह शोक गीत उनके दुखद इतिहास का चित्रण है। मेरे प्रियो, यहां पर अध्याय 19 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 20 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है इसराइल के पाप के लंबे इतिहास का अवलोकन और भावी दंड एवं पुनः स्थापन। अध्याय 20 से 24 में यरूशलेम के दंड की अंतिम भविष्यवाणियां हैं। इस भाग में मैं आपका ध्यान 2 बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात, इन लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश कितना लंबा और विस्तृत है। जिस दिन नबूकदनेस्सर ने उन्हें आकर घेरा, उस दिन तक परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए तैयार था। परमेश्वर नबूकदनेस्सर को अशुरों के समान नष्ट कर देता और उसे उनके विनाश की अनुमति नहीं देता, परंतु वे परमेश्वर की ओर नहीं फिरे और वे दंड के भागी हुए। अंतिम पल तक परमेश्वर उन्हें दया दिखाता रहा। दूसरी बात, जिस दिन से यरूशलेम का धोखा किया गया, उसी दिन यहेजकेल की पत्नी मर गई। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि वह उसके लिए ना तो रोए और ना ही विलाप करे। मैं देखता हूं कि यहेजकेल और यिर्मयाह स्वभाव में एक दूसरे के विपरीत थे। यिर्मयाह में एक नारी का सा हृदय था और वह रोता था। वह परमेश्वर के संदेश सुनाता था जिससे उसे दुख होता था। क्योंकि वह रोता था इसलिए प्रभु यीशु की तुलना उससे की गई थी। यहेजकेल एक प्रकार से एक नायक था जो परमेश्वर द्वारा दी गई भूमिका को दर्शाता था। वह अपनी भूमिका निभाता था, परंतु इसका प्रभाव उसके मन पर नहीं पड़ता था। जी हाँ, उसका मन कठोर प्रतीत होता है। वह परमेश्वर का केवल एक वक्ता था। मेरे प्रियो, इसराइल के पाप के इतिहास का अवलोकन, भावी दंड एवं पुनर्स्थापन। अध्याय 20 में यहूदा के पापों का पुनरालोकन है। यहां फिर यहेजकेल अपने नहीं परमेश्वर के वचन को सुनाता है। चाहे दुख का समाचार हो या आनंद का, उसका काम केवल संदेश पहुंचाना है। उसका प्रभाव आप पर भी पड़ना है। आइए हम पढ़ें यहेजकेल 20 उसके 1 पद में लिखा है, 7वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को इसराइल के कितने पुरनिये यहोवा से प्रश्न करने को आए और मेरे सामने बैठ गए। मेरे प्रियो, वे अब यहेजकेल के पास आने लगे। वे परमेश्वर से सुनना चाहते थे। यह 590 ईस्वी पूर्व की बात है और 588 से 586 ईस्वी पूर्व के लगभग यरूशलेम नष्ट किया गया था। हम देखते हैं तिथियों के विषय हमें रूढ़िवादी नहीं होना है। यहेजकेल 20 के 2 में लिखा हुआ है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वह अपनी बात नहीं परमेश्वर की वाणी को प्रकट करता था। यहेजकेल 20 के 3-4 पद में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, इसराइली पुरनियों से यह कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, क्या तुम मुझसे प्रश्न करने आए हो? प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध तुम मुझसे प्रश्न करने ना पाओगे। हे मनुष्य के संतान, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? क्या तू उनका न्याय ना करेगा? उनके पुरखाओं के घिनौने काम उन्हें जता दे। वे परमेश्वर की शिकायत तथा आलोचना करते थे कि यरूशलेम के विनाश और उन्हें दंड देने में पक्षपाती है। अब वे समझ रहे थे कि ऐसा होगा। यहेजकेल उनके साथ अवलोकन करता है, क्योंकि परमेश्वर अपना आरोप और उनके भावी दंड के कारण दोहराने में पीछे नहीं हटता है। यहेजकेल 20 के 5 पद में लिखा है, और उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, जिस दिन मैंने इसराइल को चुन लिया और याकूब के घराने के वंश से शपथ खाई और मिस्र देश में अपने को उन पर प्रकट किया और उनसे शपथ खाकर कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर उस समय का इतिहास दोहराता है जब उसने उन्हें मिस्र से बाहर निकाला था। जी हां, मिस्र के दासत्व से मुक्ति दिलाई थी और उन्हें जंगल में ले चला था। यहेजकेल 20 अध्याय के 13 पद में लिखा है, तो भी इसराइल के घराने ने जंगल में मुझसे विद्रोह किया, वे मेरे विधियों पर ना चले और मेरे नियमों को तुच्छ जाना। जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा, और उन्होंने मेरे विश्राम दिनों को अति अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में इन पर अपनी जलजलाहट भड़का कर इनका अंत कर डालूंगा। जंगल में उस पीढ़ी ने परमेश्वर के साथ बलवा किया और परमेश्वर ने उन्हें जंगल में मरने दिया। यहेजकेल 20 उसके 21 और 22 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु उनकी संतान ने भी मुझसे विद्रोह किया, वे मेरे विधियों पर ना चले, ना मेरे नियमों के मानने में चौकसी की। जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा, मेरे विश्राम दिनों को उन्होंने अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में उन पर अपनी जलजलाहट भड़का कर अपना कोप दिखाऊंगा। तो भी मैंने हाथ खींच लिया और अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि उन जातियों के सामने जिनके देखते हुए मैं उन्हें निकाल लाया था, वे अपवित्र न ठहरे। अगली पीढ़ी भी विद्रोही निकली। हम देखते हैं यहेजकेल 20 उसके 25 और 26 पद में लिखा है, फिर मैंने उनके लिए ऐसी ऐसी विधियां ठहराई जो अच्छी न थी, और ऐसी ऐसी रीतियां जिनके कारण वे जीवित न रह सकें। अर्थात वे अपने सब पहलौठों को आग में होम करने लगे। इस रीति मैंने उन्हें उन्हीं की भेंटों के द्वारा अशुद्ध किया जिससे उन्हें निर्वंश कर डालूं, और तब वे जान ले कि मैं यहोवा हूं। मेरे प्रियो, यह धर्मशास्त्र का एक विचित्र अंश है। इसके अर्थ निर्धारण में टीकाकारों में विभिन्न विचार हैं। मेरे विचार में यहां वही बात लिखी गई है जो पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को अपने दूसरे पत्र में लिखता है, दूसरे अध्याय उसके 15-16 पद में, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? जी हां, परमेश्वर ने उन्हें अपना वचन दिया तो उन्होंने उसे अस्वीकार किया, तो उसने उन्हें उनके ही मार्गों में छोड़ दिया। व्यवस्था जो भली थी अब बुरी हो गई, क्योंकि वह उन्हें दोषी ठहराकर दंड के लिए नियत करती थी। सुसमाचार भी आज ऐसा ही है। यदि आप सुसमाचार सुनकर उसे तुच्छ समझते हैं तो उचित था कि आपने सुना ही नहीं होता। यदि आप सुसमाचार को अस्वीकार करते हैं तो वह आपके लिए मृत्यु कारक है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर कहने के योग्य न होंगे, कि आपने सुसमाचार नहीं सुना। इस घोर दोषारोपण को सुनकर आप निश्चय ही कहेंगे कि परमेश्वर के साथ उनका संबंध समाप्त हो गया है। परंतु यहेजकेल की पुस्तक में यदा कदा आपको अद्भुत प्रतिज्ञाएं दिखाई देंगी। उनके गहनतम अंधकार में भविष्यवाणी ने प्रचंड ज्योति चमकाई है। यहेजकेल 20 उसके 33 और 34 पद में लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे जीवन की शपथ मैं निश्चय बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काए हुए जलजलाहट के साथ तुम्हारे ऊपर राज्य करूंगा। मैं बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हो गए थे इकट्ठा करूंगा। परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें स्वदेश लौटा लाने की इच्छा रखता है। इसराइल के साथ परमेश्वर के उद्देश्य का पूरा होना अभी शेष है। एक दिन यही लोग जो उसे गलत कहते हैं घोषणा करेंगे कि वह सही है। यहेजकेल 20 उसके 45 से 47 पद में लिखा हुआ है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान अपना मुख दक्षिण की ओर कर, दक्षिण की ओर वचन सुना और दक्षिण देश के वन के विषय में भविष्यवाणी कर और दक्षिण देश के वन से कह, यहोवा का यह वचन सुन, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुझ में आग लाऊंगा और तुझ में क्या हरे क्या सूखे जितने पेड़ हैं सबको वह भस्म करेगी। उसकी धधकती ज्वाला न बुझेगी और उसके कारण दक्षिण से उत्तर तक सबके मुख झुलस जाएंगे। दक्षिण देश के वन के विषय में भविष्यवाणी कर। कुछ टीकाकारों के विचार में यह यहूदा प्रदेश के संबंध में है और कुछ के विचार में यह नेगेब के संबंध में है, परंतु दिशा दक्षिण ही है। यदि आप नेगेब प्रदेश को देखें तो आश्चर्य करेंगे कि वहां के जंगल का क्या हुआ। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने उसे दंड दिया और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। वह देश कभी दूध और शहद का स्थान था, परंतु आज उसे देखकर आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा और आप नहीं कह पाएंगे। यह एक अद्भुत भविष्यवाणी है। परमेश्वर का व्यवहार उनके साथ समाप्त नहीं हुआ है। मेरे प्रिय, यहां पर अध्याय 20 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 21 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है बेबीलोन मसीह के आगमन तक दाऊद के वंश से अंतिम राजा का अंत कर देता है। हमारे लिए यहेजकेल की पुस्तक का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पुस्तक प्रायः अनदेखी की जाती है। हमारे आज के समय में इसका संदेश अत्यधिक प्रासंगिक है। यहेजकेल के वचन वर्षों पूर्व के हैं, परंतु जैसा उसने बार बार कहा है, यह परमेश्वर का वचन है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, इसलिए यह आज के लिए और इस देश के लिए भी वचन है। मुक्त विचारक कहते हैं कि यहेजकेल की पुस्तक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के समान अबोधगम्य है, अतः इसमें हमारे संदर्भ में कोई संदेश नहीं है। यहेजकेल के दर्शन अद्भुत हैं और मैं नहीं कहता कि मेरा अर्थ निर्धारण ही अंतिम व्याख्या है। मैं तो भय और आश्चर्य से भरा खड़ा हूं। पुस्तक का यह अध्याय अत्यधिक व्यवहार संबंधित है। मैं सच कहता हूं कि यहेजकेल की पुस्तक को समझना कठिन नहीं है और वह हमें व्यवहारिक बातें सिखाता है। मेरे मित्रों, अध्याय 21 यहेजकेल की पुस्तक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि वह स्पष्ट कहता है कि बेबीलोन का राजा मसीह के आगमन तक दाऊद के वंश से अंतिम राजा को समाप्त कर देगा। आइए आप मेरे साथ पढ़िए यहेजकेल की पुस्तक 21 अध्याय उसका एक पद, लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहेजकेल इस अध्याय में तीन बार इस उक्ति को दोहराएगा। आपके पास एक ही विकल्प है, या तो आप इसे स्वीकार करें कि यह परमेश्वर का वचन है, या यह कहें कि यहेजकेल झूठ कहता है। मैं तो यही मानता हूं कि यह परमेश्वर का वचन है, यहेजकेल की कल्पना नहीं है। जी हाँ, मेरे विचार में तो यहेजकेल की भावनाएं इस संदेश से जुड़ी हुई नहीं थी, जबकि यर्मिया का संदेश उसकी भावनाओं को छू लेता है। उसका प्रत्येक शब्द भावनाओं से युक्त था, परंतु मेरे विचार में यहेजकेल के साथ ऐसा नहीं था। जी हाँ, परमेश्वर ने उसे सेवा के आरंभ में ही कह दिया था कि वह विद्रोही और कठोर मन वालों से बात करेगा। परमेश्वर ने उससे कहा था कि वह यहेजकेल को उनसे भी अधिक कठोर मन का बना देगा, अतः वह कठोर था और उन्हें कठोरता के साथ वचन सुना सकता था। आप इसी कारण उससे प्रेम कर सकते हैं, यदि उसकी भावनाएं उसके वचन से जुड़ जाती है तो वह अपने संदेश के कारण टूट जाता। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। कृपया वचन के अनुसार चलें और प्रभु में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना। ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले। ये दुनिया है, ख्वाब सुने हैं।